अभी जो चर्चा चल रही थी कल तक, उस चर्चा में पृथ्वी के कष्ट को सुनकर के ब्रह्मा जी महाराज देवताओं और भगवान शंकर के साथ में भगवान विष्णु को के पास जाते हैं और समाधि में भगवान विष्णु का दर्शन अपनी अंतर आत्मा में करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति, जो गीता का वचन भगवान का है, उस वचन के हिसाब से अपने हृदय के अंदर ही भगवान का साक्षात्कार करते हैं। अच्छा, जब भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं तो जो उनकी समस्या थी, वो समस्या बोलने के पहले, क्योंकि ईश्वर क्या है, जो हमारे अंदर की बात को समझे वही। देखो, आपकी समस्या का समाधान वही कर सकता है जो आपके चित्त की बात को समझता हो। जो आपके चित्त की बात न समझता हो वो आपकी समस्या सुन तो सकता है लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी जो बोलना चाहते हैं, जो उन्होंने अभिव्यक्त किया, उससे ये स्पष्ट पता लगता है कि बोलने के पहले श्री हरि ने उनके दिल की बात समझ ली, उनके मन की बात समझ ली। वही हरि है जो व्यापक है और सर्वज्ञ है, उसके दिल की बात समझ ली। तो कहते हैं, बात समझने के बाद अब तक ब्रह्मा जी और देवताओं के बीच में बात चल रही थी, यहां से सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं। दसम स्कंद में पहले बोला थोड़ा और ब्रह्मा जी बोल रहे थे, अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित के साथ में सीधा वक्ता और श्रोता का संवाद यहां से प्रारंभ हो रहा है। देख लीजिए, श्री सुख उवाच, क्या किया उन्होंने, क्योंकि मैंने कल बताया ना, सुखदेव एक बहुत बड़े ऋषि हैं और वो बोलते हैं जिसका उनको दर्शन होता है, जिस चीज का उन्हें प्रत्यक्ष होता है, उस चीज को परीक्षित को बोलते हैं। तो क्या उनको दिखाई दे रहा है वहां बैठे बैठे, कहां शुक्र ताल में बैठे बैठे उनको क्या दिख रहा है? तो कह रहे हैं, देख ली, सुन लीजिए बात थोड़ा। इत्यादिश्यमरगणान प्रजापति पति विभु आश्वासय च महिम गिर्भी स्वधाम परययम ययोहु। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया, भगवान आएंगे, उनको पता हो गया और उनकी सेवा करने के लिए तुम यदुवंश में उत्पन्न हो जाओ, इस प्रकार का आदेश दे दिया। किसको? देवताओं को आदेश दिया। और देवताओं को आदेश दिया आश्वास्य च महिम, और पृथ्वी को आश्वासन दिया। देवताओं को आदेश दिया, पृथ्वी को आश्वासन दिया, आश्वासन दिया। और आदेश और आश्वासन दे करके स्वधामम परययम ययोहु, ऐसा बताया ना, शायद एक श्लोक छूट गया थोड़ा सा। उन्होंने कहा था कि क्या शेषनाग जी उत्पन्न होंगे और शेषनाग के बाद एक श्लोक रह गए, जरा सुन लीजिए उसको भी थोड़ा। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुणां सेना कार्यार्थे संभविष्यति। उनका अवतार होगा किसका? शेषनाग का अवतार होगा भगवान का प्रिय करने के लिए। वो आप लोगों ने कथा सुनी है रामायण में, लक्ष्मण जी महाराज जी ये बनते हैं, तो भगवान का प्रिय करने के लिए तो बलराम होंगे, लेकिन भगवान का कार्य करने के लिए कौन पैदा होगा? माया। बड़ा सुंदर श्लोक है, विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। महाराज, भागवत के अंदर आप लोग
जब सुनेंगे थोड़ा आगे समय होगा कि नहीं होगा। भगवती की पूजा का विधान श्रीमद् भागवत में किया गया है और यहां तक बताया गया कि कलयुग में मनुष्य की इच्छा भगवती ही पूरा करेगी। भागवत श्रवण कराते समय लोग उस चीज को बोलते नहीं है क्योंकि समय नहीं होता। बहुत स्पष्ट बताया है, यदि अभी अपने लोगों को श्रवण करने का मौका मिलेगा,
बहुत स्पष्ट बताया है कि कलयुग में मनुष्य की मनोकामना भगवती की आराधना से पूरी होगी, ऐसा बताया। देखो तो विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। माया शब्द का अर्थ होता है अघटित घटना पटयसी माया, जो घटना घट नहीं सकती उस घटना को चुटकी बजा करके जो घटा के दिखा दे उसी का नाम क्या है, माया। हम लोग ये प्रेमपुरी के हॉल में एसी करते हैं ठंडा हो जाता है, बाहर निकलो तो गर्मी गर्म, लेकिन ऊपर वाले की कृपा हो जाए दो मिनट में इतनी भयंकर बारिश हो जाए सब पूरा वातावरण ठंडा हो जाता है। अघटित घटना, उसमें ब्रह्मसूत्र की टीका भामतिकार ने माया की व्याख्या की बड़ी सुंदर। विष्णुर माया भगवती, यहां लिखा है यया सम्मोहितम जगत, भगवान ने उस माया को अपना सेक्रेटरी बनाया, द्वितीय सचिवस्य प्रभवतो, और उससे बोला तुम दुनिया बनाओ। फिर उसने क्या किया, आकाश बनाया, वायु बनाई, तेज बनाया, जल बनाया, पृथ्वी बनाई, औषधि बनाई। ये हम लोग नहीं बना सकते, हम तो बने बनाए में अपना हक जमाते हैं। जो हम बनाते हैं इस बने हुए से ही कुछ बनाते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं था, इसलिए यहां बहुत सुंदर शब्दों में बहुत सुंदर व्याख्या किया, आदिष्टा परगुणा अंशेन कार्यार्थे संभविष्यति। प्रभु का जितना कार्य है उस कार्य को करने के लिए भगवान ने माया को आदेश दिया। और आप समझना, माया के प्रति भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में मम शब्द का प्रयोग किया है, मम माया दुरत्यया। उन्होंने कहा कि माया मेरी है, मम मैंने मेरी है, इसलिए दुरत्यया, उसका पार पाना बड़ा कठिन काम है। सबका पार पा सकते हैं, लेकिन उस माया के लिए भगवान ने स्वयं बोल दिया दुरत्यया, क्योंकि उसके द्वारा भगवान सारा कार्य करते हैं। चलो अच्छा, देवताओं को उन्होंने आदेश दिया और पृथ्वी को आश्वासन दिया, आदेश और आश्वासन देकर के ब्रह्मा जी वहां से चले जाते हैं। अब कहानी जरा थोड़ी शुरू अलग हो जाती है। सूरसेना यदुपति मथुराम अवसन पुरीम, माथुरान सूरसेनाश्च विषयान बुभुजे पुरा। पुरा यदुपति, आपने सुना है यदु कौन था, यदोर धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तमः। धर्मशील जो यदुवंशी थे वो यदुवंशी मथुरा में राज करते थे, राजधानी उनकी मथुरा थी। और जैसे अभी अपने यहां क्या करते हैं, दिल्ली में राज करके रहते, दिल्ली में राज करके और कई प्रांतों में राज करते हैं कि नहीं करते हैं, कौन दिल्ली वाला। उसी प्रकार यहां बताया माथुरान सूरसेनाश्च विषयान बुभुजे पुरीम, मथुरा में रहते हुए पूरे जगत 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 के ऊपर जितना भी उनका क्षेत्र होगा उस क्षेत्र के ऊपर वो राज करते थे। और प्रश्न ये हुआ कि मथुरा में ही वो क्यों रहते थे, दूसरी जगह क्यों नहीं रहते थे? तो सुखदेव जी महाराज उसका उत्तर दे रहे हैं, राजधानी तथा सा भूत सर्व यादव बुभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा कौन है? देखो कंस रहता है केवल इतनी बात नहीं है, बड़ी सुंदर सर्व यादव विभुजाम बुभुजाम, बड़े बड़े यादवों के जितने राजा हुए उन सब राजाओं की भोग स्थली और कार्य स्थली मथुरा थी। बोला मथुरा क्या है? तो ऐसा बताते हैं, मथ्यते जगत सर्वम ब्रह्म ज्ञानेन, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा संपूर्ण जगत का जो मंथन किया जाता है और मंथन करने के बाद जो निकलता है, जैसे आप दधि मंथन करते हो तो दधि मंथन करने के बाद क्या निकलता है? नौकर निकलता है। इसी प्रकार से जब जगत का आप मंथन करते हो तो जगत का मंथन करने के बाद क्या निकलता है? आप इतवार के दिन पाठ करते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहम, ये मंथन हो गया। इस मंथन के बाद अंतिम में क्या निकलता है? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, ये मंथन करने के बाद ये निकलता है सार। इसी प्रकार से जिस ब्रह्म की ज्ञान के द्वारा इस जगत का मंथन किया जाता है और मंथन करने के बाद अवशेष क्या रह जाता है? ब्रह्म। वो ब्रह्म जहां रहता है उसका नाम है मथुरा। सुन लेना बात, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, जहां नित्य भगवान सन्निहित रहते हैं उसी का नाम क्या है? मथुरा। और एक श्लोक आता है, विलक्षण है थोड़ा सा, मथुरा तद विप्रीतेन मध्यम अक्षर वर्जिता यस्य मुखे नास्ति तन्नाम तस्य मुखे मध्यम अक्षर। मथुरा तद विप्रीतेन, मथुरा का उल्टा करो तो क्या होता है? राथुमा, मध्यम अक्षर वर्जिता, मध्यम अक्षर को हटा, बीच वाले अक्षर को हटा दो तो क्या बच गया? राम। यस्य मुखे नास्ति तन्नाम, जिसके मुंह में वो नाम नहीं है उसके मुंह में बीच वाला अक्षर उसके मुंह में जो है बीच वाला अक्षर। मथुरा तद विप्रीतेन मध्यम अक्षर वर्जिता यस्य मुखे नास्ति तन्नाम तस्य मुखे मध्यम अक्षर, उसके मुख में मध्यम अक्षर है ऐसा बोलते हैं, देख लीजिए। चलो अच्छा, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, जहां नित्य भगवान सन्निहित रहते हैं उसका नाम क्या हो गया? मथुरा हो गया। अच्छा, तस्याम तु करैक्षौरी वसुदेव कृतोद्वहा देवक्यः सूरया सार्धं प्रयाणे रथमारुहत। तस्याम उस मथुरा में किसी समय करही चित मैंने किसी समय सौरी ही सूरनंदन, सूरस्य जैसे वसुदेवस्य पुत्रम वासुदेव, ऐसे सूरस्य पुत्रम सौरी, तो सूर के पुत्र सौरी मैंने वसुदेव जी महाराज, वसुदेव जी महाराज का कृत उद्वाहा विवाह हुआ। किसके साथ में? देवकी के साथ में, देवकी के साथ में विवाह। अच्छा, विवाह होने के बाद सार्धम प्रयाणे रथमारूहत, विवाह होने के बाद वो रथ में आरूढ़ हो गई जाने के लिए। विवाह होने के बाद विदाई होती है ना, जाने के लिए। जब उसकी विदाई होने लगी, देखो, धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत काल परखेउचारी, विपत्ति के समय व्यक्ति के धर्म की पहचान होती है कि व्यक्ति कितना धार्मिक है। विषम परिस्थिति में आपको थोड़ा सा एक दृष्टांत दूं, यदि आपने ध्यान से देखा होगा, जब धरती में रथ का पहिया धस जाता है कर्ण का, और कर्ण अर्जुन की तरफ देख करके कहता है कि ये धर्म युद्ध नहीं है, आदमी अपने प्राणों को बचाने के लिए धर्म की दुहाई देता है। लेकिन यहां पर जो मैं बात बताने वाला हूं आपको, अर्जुन के चित्त में धर्म के बहुत गहरे संस्कार हैं, जबरदस्त संस्कार हैं। वो कर्ण को मारने के लिए निवृत्त हो जाता है। आप जरा समझना थोड़ा सा, जब अभिमन्यु को मारा, उन सात महारथियों में कर्ण भी था, और अभिमन्यु कर्ण के बच्चे के समान था। जब आदमी अधर्म में प्रवृत्त होता है और किसी दुष्ट आदमी का साथ करता है, उस समय आदमी की बुद्धि से धर्म स्वयं निकल जाता है। अर्जुन जो है हाथ रोक लेता है, कृष्ण भगवान पीछे मुड़ के देखते हैं अर्जुन की तरफ। भगवान ने कहा क्या हुआ? उसने कहा इसको मारना उचित नहीं है। ये उस समय जो अर्जुन को निवृत्त कर रहा है मारने से, ये क्या चीज है? ये अर्जुन के धर्म के संस्कार हैं। यही संस्कार जो है ना, यही हमारे काम आते हैं, निवृत्त करते हैं। उस समय कृष्ण कहते हैं याद करो, जब इन लोगों ने अभिमन्यु को मारा, उस समय ये धर्म की बुद्धि कहां चली गई थी? फिर अर्जुन बेहोश हो जाता है। अभिमन्यु की याद में वो बेहोश होकर के और कर्ण के सिर को क्या देता है। तो ये जीवन में जो धर्म के संस्कार होते हैं, किसी के अंदर अधर्म के संस्कार होते हैं, ये बाहर से व्यक्ति देखता कुछ है, अंदर से होता कुछ है। शास्त्रों में तो सबसे बड़ा पाप यही बताया, अन्यथा संतम अन्यथा प्रतिपद्यते, है कुछ और दिखता कुछ है। आप जैसे हो यदि वैसे दिखने की कोशिश करो, यदि आप पापी भी हो तो पुण्य आत्मा बनने में देरी नहीं लगती है, लेकिन यदि आप पापी हो और पुण्य आत्मा दिखने की कोशिश करते हो तो आप अंदर से हमेशा पापी रहोगे और दिखोगे पुण्य आत्मा। इसलिए बता रहे हैं, देखो जब वो रथ में बैठी कौन? देवकी। तो उस समय जो राजा उग्रसेन है, उनका एक पुत्र था कंस। अब बता रहे हैं देखो, उग्रसेन सुता कंस स्वसुप्री अचिगिर्षया रश्मिन हया नाम जग्रह रोकमयी रथ सतैव्रता। ये भागवत के जो श्लोक है ना, ये श्री कृष्ण का हृदय है। ये सब ऐसा लिखते हैं कि ये जो श्लोक हैं, ये साक्षात इनको यदि आप श्रवण भी करो, दशम स्कंद के श्लोकों को उसमें लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा सुना तो बहुत बार होगा। आत्मदेव की जो मुक्ति हुई, वो दशम स्कंद का पाठ करते करते ही उनकी मुमात्मे में श्रवण किया होगा आप लोगों ने। आत्मदेव जब जंगल में चले जाते हैं तो दशम स्कंद का ही पाठ करते हैं, और दशम स्कंद का पाठ करने के बाद उनकी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि दशम स्कंद जो है भागवत का मूल है, ऐसा बता दिया। चलो, वो उग्रसेन का पुत्र जो कंस है, वो कहते हैं स्वसुप्रिय चिकीर्षया, देवकी को प्रसन्न करने के लिए क्या करता है? रथ सतई, सैकड़ों रथों से घिरे हुए उसका जो रथ था, वो तो यहां पर लिखा है सोने का बना हुआ वो रथ था, उस रथ को क्या करता है? थोड़ा सा यहाँ पे उसका भी वर्णन किया है, किसका, दहेज का वर्णन किया है थोड़ा सा। एक श्लोक सुना देता हूँ दहेज का आपको। चतुशतम पारिब्रहम गजानाम हेम मालिनाम अश्वानाम अयुतम च अर्धम अयुतम च अर्धम रथानाम त्रिसठशतम। दहेज के रूप में कहते हैं 400 तो हाथी दिए, कितने 400 हाथी, और 15,000 घोड़े और 1,800 रथ, इतना उस समय दहेज दिया। चलो इतनी बात हो गई। अब ये होने के बाद जो कंस है वो कंस रथ में बैठ करके आगे जाने लगता है और दिखाने की कोशिश करता है कि मैं कैसा हूं, कितना सेवक हूं। तो यहां पर सुखदेव, अभी सुखदेव जी बोल रहे हैं, अब जो उनको साक्षात्कार हो रहा है उस समय की लीलाओं का, उसका साक्षात्कार बता रहे हैं। पथि प्रग्रहणम कंसम अभास्याह शरीरवाक अस्याम त्वम अष्टमो गर्भ हंतायाम अवहसे बुदा। जब वो उसको लेकर के जा रहा था तो अशरीर वाक, हम लोगों की जो वाक होती है ना उसको बोलते हैं शरीर वाक। हम लोगों की वाणी शरीर से निकलती है, और जब ऐसा लिखा है प्राण प्रयाण समये कप बात पित्तई, ऊपर वाले के मारने के तरीके भी कैसे गजब के हैं। ऐसा बूढ़ा बना देता है, न चल सकता है न बोल सकता है न कह सकता है, ऐसी हालत हो जाती है आदमी की। ये हैं तरीके। अशरीर वाक उसने क्या कहा, अस्या स्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम अभसे अबुदह। आकाशवाणी ने कह दिया, सबसे पहले तो क्या बोला, अबुदह, हे मूरख। अब इस आकाशवाणी की जरूरत लगती है क्या आपको? हमको भी लगता है क्या जरूरत थी इस आकाशवाणी की, लेकिन नहीं, इस आकाशवाणी की बहुत जरूरत थी। देवकी के मन में कंस के प्रति बहुत सहानुभूति थी। दुष्ट व्यक्ति कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकता। जो बहुत ज्यादा प्राणों से प्रेम करता है ना, वो प्राण से प्रेम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकता। और किसी अधार्मिक को धार्मिक समझना भी ये जीवन का बहुत बड़ा अज्ञान है। कंस की हकीकत देवकी के सामने आने जरूरी थी, तो बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। सुग्रीव जी महाराज आगे कहते हैं कि हे अबुदह, हे मूरख, जिसको तू इतने प्रेम से ले जा रहा है इसके अष्टम गर्भ के द्वारा तू मारा जाएगा। कंस ने तो जब बात सुनी उसके हाथ पांव फूल गए। मृत्यु का नाम सुनते ही आदमी के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्या गजब की बात है। आगे इत्यु तहा सखला पापो भोजानाम कुलपांसना भग्निम हंतुमारब्ध खड्ग पाणी कचे गृहित। कच्छ बोलते हैं केसों के लिए। उसने देवकी के केसों को पकड़ा और जो खड्ग तलवार निकाली उससे, और तलवार निकलने के बाद देवकी का गर्दन काटने के लिए वो प्रवृत्त होता है। कौन, देखिए आप, कहां उसको छोड़ने के लिए जा रहा था और कहां मारने के लिए तैयार हो। सुखदेव जी कह रहे हैं, तम जुगुप्सित कर्माणम निरसंसम निरपत्रपम वसुदेवो महाभाग उवाच परिसांत्वयन। निरपत्रपम, निरपत्रप, निरपत्र संस्कृत में बोलते हैं निर्लज्ज के लिए, जैसे संस्कृत में बोलते हैं ना आतपत्र। आतपत्र किसको बोलते हैं मालूम है? छाते के लिए। हाँ, ऐसा लिखा है भागवत में, वेणु गीत में, दृष्ट्वा तपे ब्रज पशुन सह राम गोपई। एक बार भगवान राम और कृष्ण जंगल में गाय को चरा रहे थे तो भयंकर धूप पड़ गई। सूर्य भगवान भी अपनी किरणों से भगवान को छूना चाहता है, क्योंकि ब्रह्म के दर्शन बिना ब्रह्म के अनुग्रह के नहीं होते हैं। अनुग्रह होता है तो ही दर्शन होते हैं। सूर्य की किरणें चले, बादल ने देखा। सुखदेव जी ने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया वहां पे, स्व बपुसाम बुध आतपत्रम। उन्होंने कहा इनके ऊपर छाता करना चाहिए। तो किसका छाता किया? स्व बपुसा, अपने शरीर का ही छाता बना दिया। ऐसा समर्पण, स्व बपुसाम बुध आतपत्रम। अम्बुद बोलते हैं बादल के लिए, और अब बपु मैंने शरीर, अपने शरीर के द्वारा ही उन्होंने छाता बना दिया और श्री कृष्ण के ऊपर छाता किया। क्या जो कृष्ण के महात्म्य को समझते हैं आप लोग, भागवत में भगवान की सेवा करने वाला सबसे श्रेष्ठ कौन है? आप लोग सब सुनते हैं, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भगवान की सेवा करने वाला सबसे उत्तम किसको बताया भागवत के, भागवत में है? देखो भागवत वेणु गीत में लिखा है, धन्यायम अद्री हरिदास बर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। भगवान के सेवकों में सबसे श्रेष्ठ सेवक जो है वो गोवर्धन पर्वत है। धन्यायम अद्री, अद्री बोलते हैं पर्वत के लिए, जिसमें रोज राम और कृष्ण के चरणों का स्पर्श होता है, और चरणों को पाने के लिए उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। उसने ऐसी शरणागति स्वीकार करी है कि रोज वहां चरण आते हैं, और गायों को घास देता है और ग्वाल बालों को कंदमूल खिलाता है। ये जो प्रसाद उरसाद की व्यवस्था है ये वहीं से शुरू है। धन्यायम अद्री हरिदास भरियो, ये वेणु गीत में लिखा है, कभी पढ़ के देखना। सुन सुन तो बहुत लिया आपने। ये अद्री, ये धन्य है ये भगवान का भक्त, जहां चरण स्वयं जाते हैं। हम तो रोज चरणों की खोज में निकलते हैं और घर में जूते ले आते हैं, कहां चरण मिल पाते हैं। इसलिए बोलते हैं निरपत्रपम, मैंने निर्लज्ज, निरसंसम, क्रूर। ये कौन बोल रहा है? सुखदेव जी बोल रहे हैं परीक्षित के सामने, कंस के बारे में बताया। निर्लज्ज है, क्रूर है, और जुगुप्सित कर्माणम, नीच कर्म करने वाला। नीच कर्म करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक निर्लज्ज होना चाहिए और दूसरा क्रूर होना चाहिए। निर्लज्जता और क्रूरता जब जीवन में आती है तो आदमी नीच कर्म में प्रवृत्त होता है। यदि आपके अंदर लज्जा रहती है ना, तो फिर आप कर्म करने से डरते हैं। इसलिए बता दें वसुदेवो महाभाग, अब उसने समझ लिया ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। तो सुखदेव जी देखो क्या सुखदेव की बुद्धि क्या रही होगी, कौन उस व्यक्ति को समझ सकता है। एक श्लोक के अंदर कहां कंस की व्याख्या कैसी कर दी और दूसरी पंक्ति में वसुदेव जी की व्याख्या करते हैं महाभाग। महान भाग्यवान वो व्यक्ति है जो ऐश्वर्य के साथ में ईश्वर को पाता है। महाभाग्य वो है, भाग्य से ऐश्वर्य मिलता है लेकिन महाभाग्य से ईश्वर की अनुभूति होती है। इसलिए यहां पर वसुदेव के लिए महाभाग शब्द का प्रयोग किया है। वाच परिशांतोयन, उन्होंने देखा ये ऐसे क्रूर कर्म में प्रवृत्त हो गया तो उसको सांत्वना देने के लिए वसुदेव जी महाराज कुछ कह रहे हैं। चलो कोशिश करता हूं कोई श्लोक छूटे नहीं आप लोगों के लिए। देखो आदमी जो है वो नहीं सुनना चाहता, जो होना चाहिए वो सुनना चाहता है। पापी हो लेकिन सुनना चाहते हो पुण्य आत्मा, तो बड़े जो लोग होते हैं वो दूसरे को मान देना जानते हैं। वसुदेव जी महाराज क्या कहते हैं, श्लाघनीय गुण सूरही भवान भोज यशस्करा। ये जो कंस है ना ये भोज वंश में पैदा हुआ, भोजवंशी है। अरे आप तो भोज, देखो झूठ भी कभी यदि किसी की जान बचाने के काम आए तो कभी कभी वो बोलना पड़ता है जो हम बोलना नहीं चाहते। पहले शब्द में तो सुखदेव जी ने क्या कह दिया, दूसरे शब्द में वो क्या कहते हैं, श्लाघनीय गुण ही, आप तो प्रशंसनीय गुणों वाले हो। भोजवंशी जो राजा होते थे उनका यश बढ़ाने वाले आप हैं। कथम भगनिम हन्यात, अरे इतना यश करने वाले, ऐसे समय में देवकी एक तो स्त्री है और दूसरी भगनी, स्त्री है बहन है और एक पर्व का समय है, विवाह से बड़ा कोई पर्व नहीं, ये पर्व का समय है। तो कथम हन्यात, आप इसे क्यों मार रहे हैं। अब यहां से आप लोगों की जो वेदांत की बात जो बोलते हैं, वेदांत दांत 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 वाली बात करते हो, यहां से जरा शुरू करते हैं वेदांत। अब वो कंस को समझा रहे हैं बस देव जी महाराज। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सजायते अद्य वा अब्द सतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवाम। हे राजन, इस धरा पर जो प्राणी आता है, जो कबीर ने कहा जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, चाहे बुद्ध आए हों चाहे कोई क्रूर कर्म करने वाला व्यक्ति आया हो, आता ही जाने के लिए है। मृत्युर जन्म बताम वीरा, ये वीर ये सूरवीर, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। अद्य आज मरे या 100 वर्ष के बाद मरे, टाले न टले यदि कोई चीज है तो मृत्यु है। देखो आपने हिरण्यकश्यप के बारे में सुना, उसने कहा न दिन में मरूं न रात में मरूं न भीतर मरूं न बाहर मरूं, उसने अपनी मृत्यु की इतनी सुरक्षा की। और गृहस्थ आश्रम तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब सास बूढ़ी हो जाती है तब बहू को शिक्षा मिलती है। एक बारी की बात है, अभी नाम लेना उचित नहीं, हम पेडर रोड पे किसी के घर में भोजन करने के लिए जाते माधवन जी महाराज के साथ में, तो ये इनको पता लग गया तो वो भी शायद साथ में थे। हम गए घर में भोजन करने के लिए, तो वो जो व्यक्ति था वो दोनों पति पत्नी यहां पे सत्संग में आया करते थे पहले। हम गए भोजन करने के लिए शाम के समय पे, तो उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा लगता है कि अचानक हम बड़े हो गए, सास भी गुजर गई ससुर भी गुजर गए। हमने कहा अभी तक मृत्यु के बीच में और आपके बीच में तुम्हारी सास खड़ी थी, अभी वो चली गई, इसलिए सास की सेवा जरूर करना क्योंकि मौत और तुम्हारे बीच में वो खड़ी है। उसके बाद सीधा डायरेक्ट यदि संबंध होगा तो किसके साथ होगा, तुम्हारे साथ में। कहा महाराज जी ऐसा लगता है कि अचानक हम बड़े हो गए, ये मृत्यु निश्चित है, इसलिए बता रहे हैं मृत्यु जन्म बताम वीरह देहे न स जायते। जब देह आती है देह के साथ में मौत भी आती है, और देह दिखाई देता है और मौत दिखाई नहीं देती। जो चीज दिखाई नहीं देती वो ज्यादा बलवान होती है, और जो दिखाई देती है वो बहुत कमजोर होती है। देह बहुत कमजोर है और मौत बहुत बलवान है। अद्य वाब्ध सतांते वा मृत्युरुभय प्राणिनाम ध्रुवम। आज आप भागवत का सिद्धांत समझ लेना थोड़ा सा। अच्छा आगे क्या बताते हैं वो, देहे पंचत्वमापन्ने देही कर्मानुगो अवस देहांतरम अनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते बपुः। क्या कहते हैं, शरीर जो है ये पांच तत्वों से बना हुआ है। जैसे आप धंधा करते हैं तो बैंक से कर्जा लेते हैं, कर्जा लेते हैं, आपने 1 लाख रुपया कर्जा लिया और 50 लाख रुपया कमाया। इसी प्रकार से हम साधना और भोग करने के लिए हमने कर्जा लिया है, किससे, पृथ्वी से, जल से, तेज से, वायु से और आकाश से, इन 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। और इस कर्जे से हमको क्या करना है, ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है और ईश्वर की अनुभूति करनी है, और साथ में कर्जा उतारना भी है, नहीं तो विजय माल्या की तरह भागना पड़ेगा। हाँ कर्जा नहीं उतारोगे तो क्या करोगे महाराज, यहां से तो आदमी भाग सकता है लेकिन परमात्मा के यहां से भागना बहुत कठिन काम है, वो उसकी पकड़ में सब कुछ है, वहां से नहीं छूट सकता आदमी। देहे पंचत्वमापन्ने, जब समय पूरा हो जाता है, आपको किसके लिए मिला कर्जा, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए और ईश्वर की अनुभूति के लिए। आपने कर्जा, आप करो या न करो, ये समर्थ व्यक्ति अपना कर्जा वापस ले लेगा। पंचत्वमापन्ने, ये फिर 5 पांचों में मिल जाएंगे। और देहांतरम अनुप्राप्य, ये भागवत का सिद्धांत जरा विलक्षण है। यहाँ पे ये 10वें स्कंद के 1 अध्याय का 39 नंबर का श्लोक है, घर में जाके देखना थोड़ा, इसलिए बता रहा हूं। यहां पर ऐसा लिख दिया, दूसरा शरीर वो प्राप्त करता है फिर वो पहला शरीर को छोड़ देता है। देहांतरम अनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते, इसमें बहुत टीकाकारों को आप देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि अगले शरीर का वो प्राप्त तो नहीं करता लेकिन आभास हो जाता है। मृत्यु के कुछ काल पहले शरीर का आभास हो जाता है, अब ये भागवत का सिद्धांत सुन लो आप, क्या सिद्धांत है देखे 40 नंबर के श्लोक के अंदर। ब्रजन तिष्ठन परेकेन यथा वा एकेन गच्छति यथा तृणजलूकैवं देही कर्म गतिम गता। एक कीड़ा होता है उसका नाम है तृणजलूक। ये भागवत का सिद्धांत है, वसुदेव जी बोल रहे हैं। क्या ब्रजन तिष्ठन परेकेन यथा वा एकेन गच्छति। अच्छा, आप एक पांव से चलते हैं कि दो पांव से चलते हैं? एक पांव। यहां भागवत कहती है ब्रजन तिष्ठन पदेकेन, एक पांव खड़ा रहेगा तब दूसरा पांव चलेगा। और दूसरा, यदि दूसरा भी चल रहा है तो चल रहा है तो तुम गिर जाओगे। तो ब्रजन तिष्ठन पदेकेन यथा वा एकेन गच्छति। लगता ऐसा है कि दो से चलता है लेकिन एकेन गच्छति, चलता वो एक के द्वारा ही है। इसी प्रकार से यथा तृणजलूक एवं देही कर्म गतिम गता। इसी प्रकार से वो जो तृणजलूक होता है वो ऐसा चलता है, आपने देखा होगा ऐसा ऐसा चलता है, ऐसा ऐसा चलता है। तो पिछला शरीर वो तब, पिछला पांव वो तब छोड़ता है जब अगला पांव पकड़ लेता है, ऐसा चलता है वो। इसी प्रकार से यह जीवात्मा ये शरीर जब छोड़ता है तो दूसरे शरीर का इसको आभास हो जाता है। यही तो बात है। और कभी किसी व्यक्ति के चेहरे पे मरने के बाद जब मरता है तो उस समय प्रसन्नता होती है, उसको पता लगता है कि अब मैं ये झोपड़पट्टी खाली करके किसी बहुत बड़े बंगले में जा रहा हूं। और किसी के चेहरे पर ऐसी उदासीनता आ जाती है कि उसको पता लगता है बंगला घर खाली करके झोपड़पट्टी में जा रहा हूं। अब चार पांव वाले मम्मी डैडी मिलने वाले हैं, सिंक पूंछ वाले मम्मी डैडी मिलने वाले हैं, तो चेहरे पर क्या आ जाती है? फिर चेहरा एकदम मुरझा जाता है उस समय। क्या सुंदर बात बताते हैं, ब्रजन तिष्ठन पदेकेन यथा वा एकेन गच्छति यथा तृणजलूक एवं देही कर्म गतिम गता। अच्छा, आगे क्या कहते हैं, स्वप्ने यथा पश्यति देहम ईदृशम मनोरथेन अभिनिविष्ट चेतना दृष्ट श्रोताभ्याम मनसानुचिंतयन प्रपद्यते तत्किमपि अवस्मृति। क्या होता है सपना, जो होता है ना सपना, सपने का मैंने आपको इसे अर्थ बताया हुआ है। आप जो नहीं हैं वो अपने को समझते हैं और जहां नहीं है वहां अपने को देखते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण बता रहे हैं भागवतकार, स्वप्ने यथा पश्यति देहम ईदृशम मनोरथेन अभिनिविष्टम। हमारा अभिनिवेश उसके साथ में हो जाता है जो हमने मन में सोचा, संस्कार रहे और वो हम बन गए। अभिनिवेश समझते हैं? अभी हमारा भी निवेश इस शरीर के साथ में है। लेकिन जब आप सपने में जाते हैं तो सपने में किसी और शरीर के साथ में अभिनिवेश आपका हो गया। तो किसके साथ में अभिनिवेश हो गया? दृष्ट श्रोताभ्याम। इसलिए शास्त्रों में लिखा है अन्य वाचा विमुंचता, फालतू की बातें भी नहीं सुननी चाहिए, फालतू का चिंतन भी नहीं करना चाहिए। दृष्ट श्रोताभ्याम स्वप्ने पश्यति। अच्छा, और वास्तविक में जो है वो उसकी अपस्मृति हो जाती है। मानो आप सपने में 5 वर्ष के दिख रहे हैं, आप हैं 50 बरस के, और 5 बरस के 50 बरस के आप हैं, तो 5 बरस के आप अपने को तभी समझेंगे जब 50 बरस के आप हैं इसकी पूरी विस्मृति हो जाए। विस्मृति होना अलग चीज है और अभाव होना अलग चीज है। हाँ, अपस्मृति विस्मृति हो जाती है, और विस्मृति हो जाने के बाद क्या होता है, फिर वो जो होता है वो अपने को देखने लगता है, जो सुना है जो समझा है वो जो कर लेता है वही अपने को समझने लगता है। कामनाओं के हिसाब से फिर उसकी प्राप्ति होती है, जिस प्रकार उसने देखा है जिस प्रकार उसने सुना है इस प्रकार से उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। आगे सुन लो थोड़ी सी बात और। यतो धावति देवनोदितं मनः विकारात्मकं आप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देही असौ प्रपद्यमाना तेन सह जायते। भागवतकार क्या कहते हैं, दैवनोदितम, दैव मैंने प्रारब्ध, दैव मैंने प्रारब्ध है ना, किसी भी काम को करने में अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। वहां बताया दैव, तो गीता पढ़िएगा आप, वहां दैव शब्द का अर्थ शंकराचार्य करते हैं संस्कार, पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं। तो नोदित शब्द का अर्थ होता है प्रेरित, जैसे हवा होती है ना, कबीर ने लिखा पत्ता गिरा डारी से ले गई पवन उड़ाए अब के बिछड़े फिर ना मिलें दूर पड़ेंगे चाहे। ये मनुष्य शरीर ऐसा है, अब के बिछुड़ गए फिर ना मिलेंगे दूर पड़ेंगे जाए, दूर मैंने या तो कोई पशु बन जाएंगे या कुछ ऐसी बनेंगे, ऐसी जगह चले जाएंगे जहां अपने में आना बड़ा मुश्किल है। तो क्या बोलते भागवतकार, यतो धावति दैवनोदितम, आपसे पूछ करके आपको पैदा नहीं किया गया, यदि आपसे पूछ करके आपको पैदा किया जाता तो शायद आप कुछ और होते हैं। तो कैसे हमको पैदा किया गया, दैवनोदितम, जैसा हमारा प्रारब्ध था उस प्रारब्ध के हिसाब से हमें पैदा किया गया। दैव इसका नाम है दैव नोदितम, माने प्रेरितम, दैव की प्रेरणा से। ये आप समझ लो, आपकी प्रशंसा नहीं करता हूं मैं, कोई आपका जन्मांतर का संस्कार होगा कि आप सुबह 7:30 बजे प्रेमपुरी में पहुंच जाते हो। दैव नोदितम, ये आपके करने से ये नहीं हो सकता, इसके पीछे दैव का हाथ है, और इस दैव का हाथ भी तभी है क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं आप ही कारण हैं। कभी जन्मांतर में आपने ऐसी साधना की है कि नहीं चाहते हुए भी आप यहां पहुंच जाते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं, माया गुणेषु रचितेषु पंचात्मकः, ये जो रचा गया है ये कैसे रचा गया, माया के गुणों से, इसका नाम है प्रपंच। माया गुणेषु रचितेषु पंचसु, पंच ये जो पांच है ना जिसको प्रपंच बोलते हैं, ऐसा महाराज जैसे स्वेटर बुनते हैं ना उसमें धागे होते हैं अलग अलग, इसी प्रकार से पृथ्वी को जल के साथ में गूंद दिया, जल को तेज के साथ में, तेज को वायु के साथ में, वायु को आकाश के साथ में। माया रचितेषु रचितेषु पंचसु यता धावति असौ देही प्रपद्यमानः, और फिर ये देही मैंने ये जीवात्मा जहां इसका प्रारब्ध ले जाता है फिर वहां चला जाता है। ये किसको समझा रहे हैं वो मालूम है आपको, लेकिन वो समझ अभी उसको समझने के मूड में वो नहीं है, उसका मूड अभी बहुत खराब हो गया। एक बार व्यक्ति जब मृत्यु के बारे में सुनता है ना तो उसका मूड पूरा जो क्या हो जाता है, क्षिप्त हो जाता है। सत्य को सुनकर के व्यक्ति को सत्य को स्वीकार करना, जैसे महाभारत की परीक्षित ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया और भाग महाभारत के परीक्षित ने मृत्यु को टालने की कोशिश की। यदि आप भागवत श्रवण करेंगे आगे के श्लोक के अंदर तो वसुदेव जी के हिसाब से दोनों सही हैं, ये भी सही है और वो भी। अब कैसे सही है इसकी चर्चा कल करेंगे थोड़ा सा।